एक खुशहाल रिश्ते का एक मुख्य तत्व के रूप में साप्ताहिक बातचीत परिचय, तीन सवालों के साथ साप्ताहिक जोड़ी संवाद का सिद्धांत। मैंने तुम्हें किस बात से चौंका दिया? मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया? मैं अपने बारे में क्या बदल सकता सकती हूँ? एक खुशहाल रिश्ते के लिए एक आजमाया हुआ सुझाव है कि सप्ताह में एक बार एक निश्चित संवाद जोड़े के रूप में किया जाए। इस बातचीत में दोनों साथी एक दूसरे के लिए जानबूझकर समय निकालते हैं और तीन विशेष सवाल पूछते हैं। जब एक बोलता और जवाब देता है तो दूसरा ध्यान से सुनता है, बिना टोके, बिना विरोध किए। इसके बाद बोलने का अधिकार बदलता है। यह नियमित संवाद एक सुरक्षित स्थान बनाता है जिसमें दोनों बीते सप्ताह की सकारात्मक और नकारात्मक बातों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। साप्ताहिक संवाद ही क्यों? क्योंकि इससे छोटी छोटी बातों को समय रहते उठाया जा सकता है, इससे पहले कि वे बड़े विवाद का रूप लें। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वे जोड़े जो नियमित रूप से खुलकर बात करते हैं कम नाराजगी और गलतफहमी का अनुभव करते हैं। चीजों को मन में दबाने के बजाय आपसी संवाद बना रहता है। ऐसे नियमित संबंध संवाद आपसी सराहना को बढ़ाते हैं और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करते हैं। ये एक साप्ताहिक रीसेट या रिश्ते की जांच की तरह काम करते हैं। आप एक दूसरे के मन की स्थिति से अपडेट रहते हैं और हम भावना को मजबूत करते हैं। आगे उन तीन सवालों को विस्तार से देखा जाएगा जो इस साप्ताहिक रिवाज में पूछे जाते हैं। हर सवाल रिश्ते की गुणवत्ता के लिए एक खास उद्देश्य निभाता है। हम हर सवाल का महत्व समझाएंगे, संभावित उत्तरों के उदाहरण देंगे और बताएंगे कि जवाबों के साथ सबसे अच्छा कैसे व्यवहार करें। अंत में व्यावहारिक सुझाव मिलेंगे कि इस साप्ताहिक संवाद को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जा सकता है। सवाल एक, पिछले सप्ताह मैंने तुम्हें किस बात से चौंका दिया? यह पहला सवाल पिछले सप्ताह की सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ साथी से जानना होता है कि कौन सा व्यवहार या गुण खास तौर पर अच्छा लगा। संक्षेप में, किस बात से आप दूसरे को अप्रत्याशित खुशी दे सके? इस सवाल का मकसद सराहना और आभार जाहिर करना है। अक्सर छोटी छोटी प्यार भरी कोशिशें या इशारे रोजमर्रा में छूट जाते हैं। जब साथी बताता है कि उसे क्या अच्छा या चौंकाने वाला लगा, तो ऐसे इशारे सामने आते हैं और उनकी कद्र होती है। इस सवाल का महत्व है जानबूझकर सकारात्मक बातों को उजागर करना। रिश्तों में सिर्फ समस्याओं पर बात करना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे की सराहना भी दिखाना जरूरी है। जोड़ों पर हुए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि आपसी सराहना और आभार रिश्ते में संतुष्टि को काफी बढ़ाते हैं। जब साथी बताता है कि उसे किस बात से सकारात्मक आश्चर्य हुआ, को दूसरा खुद को देखा और प्रोत्साहित महसूस करता है कि वह ऐसे प्यार भरे काम आगे भी करे। साथ ही ये शुरुआत सौहार्दपूर्ण माहौल बनाती है। बातचीत एक मुस्कान और अच्छे भावनाओं के साथ शुरू होती है, जिससे बाद में कठिन बातों पर चर्चा करना भी आसान हो जाता है। जोड़ों पर शोध की एक प्रसिद्ध कहावत है कि खुशहाल जोड़ों में सकारात्मक इंटरैक्शन नकारात्मक से ज्यादा होते हैं। यह पहला सवाल सकारात्मकता को जागरूक करने और अच्छे पलों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सवाल एक के उत्तरों के उदाहरण, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जब साथी से पूछा जाए कि उसे पिछले सप्ताह किस बात से चौंकाया गया, तो वह क्या जवाब दे सकता है? तुमने मुझे चौंका दिया जब तुमने अचानक मेरा पसंदीदा खाना बनाया। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने मुझे बिना किसी वजह के फूल लाकर दिए। यह इशारा अप्रत्याशित और बहुत प्यारा था। मैं सकारात्मक रूप से चौंक गया कि तुमने मेरे साथ शाम की सैर के लिए समय निकाला, हालांकि तुम्हारे पास बहुत काम था। तुमने मुझे सच में चौंका दिया जब तुमने घर की सफाई कर दी जब मैं बाहर था। घर लौटकर सब कुछ साफ सुथरा देखना, यह मेरे लिए शानदार सरप्राइज था। मुझे यह आश्चर्यजनक और अच्छा लगा कि तुमने पिछले सप्ताह मेरे कठिन कार्य दिवस के बाद इतनी ध्यानपूर्वक पूछा और मेरी बात सुनना चाहा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो सिर्फ उदाहरण है। हर जोड़ा और हर सप्ताह अलग होता है। जरूरी है कि जवाब देने वाला साथी ईमानदारी से बताए कि उसे क्या अच्छा लगा। इसमें छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें भी शामिल हो सकती हैं। अक्सर छोटे छोटे इशारे ही, जैसे सही समय पर गले लगाना या पसंदीदा ड्रिंक लाना, बड़ा असर डालते हैं और उल्लेखनीय होते हैं। सवाल एक के उत्तर के साथ व्यवहार सवाल पूछने वाले यानी इस समय श्रोता के लिए इस सवाल का जवाब सबसे पहले है सुनना और स्वीकार करना। जो तारीफ या सराहना मिल रही है उसका आनंद ले। यह सुनना कि आपने क्या अच्छा किया आत्मसम्मान को मजबूत करता है। साथ ही जवाब मूल्यवान संकेत देता है कि साथी के लिए क्या महत्वपूर्ण है और किससे उसे खुशी मिलती है। अगर उदाहरण के लिए यह सामने आता है कि तनावपूर्ण दिन के बाद अचानक गले लगाना सकारात्मक आश्चर्य था, तो इसे भविष्य के लिए प्रेरणा के रूप में लिया जा सकता है। कई जोड़े अनुभव करते हैं कि यह सवाल एक छोटा अहा क्षण लाता है, पता चलता है कि साथी को वास्तव में क्या अच्छा लगा, कभी कभी ऐसी बात जिसे खुद ने खास नहीं समझा था। जरूरी है सराहना लौटाना, एक साधारण धन्यवाद, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, एक उपयुक्त प्रतिक्रिया है, इससे साथी को भी अपनी तारीफ सुनी गई महसूस होती है। कुल मिलाकर यह आदान प्रदान एक गर्म सकारात्मक माहौल बनाता है और दोनों को मजबूत करता है। आप बातचीत की शुरुआत प्लस साइड से करते हैं। सवाल दो, पिछले सप्ताह तुम्हें किस बात से निराश किया? यह दूसरा सवाल पिछले सप्ताह की नकारात्मक बातों या निराशाओं पर केंद्रित है। यहाँ साथी को सम्मानपूर्वक आलोचना करने या चोट पहुंचाने वाली बातों को उठाने का मौका मिलता है जो उसने महसूस की हो। यह सवाल पूछना साहस मांगता है, क्योंकि कोई भी यह सुनना पसंद नहीं करता कि उसने दूसरे को निराश किया है, लेकिन यही खुलापन एक स्वस्थ रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। यह सवाल एक ऐसा ढांचा देता है जिसमें छोटी चोटें, झुंझलाहट या अधूरी उम्मीदें छुपाई नहीं जाती, बल्कि समय रहते उठाई जा सकती है। सवाल का महत्व मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया का महत्व खास तौर पर है दबी असंतुष्टियों को उजागर करना, इससे पहले कि वे बड़े गुस्से में बदल जाएं। कई रिश्तों में गंभीर समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि नकारात्मक भावनाएं साझा नहीं की जाती और समय के साथ जमा होती जाती है। अगर निराशाएं नियमित रूप से कही जा सकें तो कोई भी साथी झुंझलाहट को मन में दबाने को मजबूर नहीं होता। इसके बजाय दोनों मिलकर समझ सकते हैं कि क्या गलत हुआ और गलत फहमियां दूर कर सकते हैं। जोड़ों की थेरेपी से जुड़े शोध बताते हैं कि संरचनात्मक रूप से विवादों को उठाना रिश्ते की संतुष्टि बढ़ाता है। जोड़े जो असहमति को छुपाते हैं वे अक्सर गहरी नाराजगी, गुस्सा विकसित कर लेते हैं जो साथ को जहरीला बना सकती है। खासतौर पर अनकही निराशाएं समय के साथ तिरस्कार में बदल सकती हैं और विशेषज्ञों के अनुसार
तिरस्कार रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दूसरा सवाल एक तरह का सुरक्षा वाल्व है, यह भाप निकाल देता है इससे पहले कि केतली फट जाए। निराशाओं को शब्दों में कहने का साप्ताहिक मौका छोटी झुंझलाहटों को बड़े झगड़ों में बदलने से रोकता है। जरूरी है कि दोनों साथी समझें, हर कोई कभी न कभी गलती करता है या कुछ नजर अंदाज कर देता है। सवाल का मकसद आरोप लगाना नहीं, बल्कि ईमानदारी से साझा करना है कि किस बात से दुख या चोट पहुंची। इससे दूसरा सीख सकता है और दोनों मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं या कम से कम माफी मांग सकते हैं। सवाल दो के उत्तरों के उदाहरण यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि निराशा वाले सवाल का जवाब ऐसा हो सकता है। ये जवाब उस साथी द्वारा मैं रूप में दिए जाते हैं जो निराश हुआ है। मैं निराश हुआ जब तुमने हमारा शुक्रवार का डिनर प्लान रद्द कर दिया। मुझे उसका इंतजार था और ऐसा लगा जैसे वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। मुझे निराशा हुई कि तुमने पिछले सप्ताह मेरे दिन के बारे में शायद ही पूछा। मुझे तुमसे ज्यादा रुचि और ध्यान की उम्मीद थी। मैं दुखी और निराश हुआ जब तुमने मेरे माता पिता से मिलने का हमारा वादा भूल गए। वह मुलाकात मेरे लिए जरूरी थी और मुझे दुख हुआ कि वह तुम्हें याद नहीं रहा। मुझे निराशा हुई कि तुमने घर के काम में कम मदद की जितना तुमने वादा किया था। इससे मुझे सब कुछ अकेले करने जैसा महसूस हुआ। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं बहुत तनाव में था तो तुम मुझे ज्यादा समर्थन दोगे। मुझे निराशा हुई कि तुमने मेरे इशारे नहीं समझे और मैं अपने तनाव में अकेला रह गया। ये बयान विशिष्ट हैं और किसी खास स्थिति या व्यवहार का जिक्र करते हैं जो निराशाजनक था। यह जरूरी है क्योंकि सामान्य या व्यापक आलोचना तुम हमेशा निराश करते हो मददगार नहीं होती और ज्यादा चोट पहुंचाती है। बेहतर है कि विशिष्ट उदाहरण दिए जाएं, जैसे ऊपर, और अपने भावनाओं पर टिके रहें। मैं निराश हुआ जब। सवाल दो के उत्तर के साथ व्यवहार। यह सवाल और इसके जवाब शायद साप्ताहिक संवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जो पूछता है और फिर आलोचना सुनता है उसके लिए जरूरी है कि रक्षात्मक ना हो, इसमें अभ्यास चाहिए। हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर खुद को सही ठहराने या समझाने की होती है कि दूसरे का भाव गलत है, लेकिन यहाँ संयम बरतना चाहिए। जब साथी अपनी निराशा बता रहा हो तो सबसे पहले सुने, ना टोके, ना तुरंत विरोध करें, उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। भले ही आप स्थिति को अलग तरह से देखें, ये स्वीकार करें कि आपका साथी आहत या निराश महसूस करता है। दूसरे की भावना एक सच्चाई है जिसे मानना चाहिए। सुनने के बाद आप सावधानी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रोता कह सकता है, धन्यवाद जो तुमने मुझे बताया, मुझे दुख है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। इससे आप भावनाओं को गंभीरता से लेने का संकेत देते हैं। अगर कोई स्पष्टीकरण जरूरी है, शायद कोई गलतफहमी थी, तो वह तभी दें जब आपने समझदारी दिखाई हो।
जरूरी हाँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, जैसी बहानेबाजी तुरंत न करें। पहले साथी को महसूस हो कि उसकी निराशा सुनी और मानी गई है।
आगे आप मिलकर आगे की सोच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा फिर ना हो, या मुझे पता नहीं था कि इससे तुम्हें इतनी चोट पहुंची। अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे सवाल परिवर्तन की इच्छा दिखाते हैं। इससे बातचीत गलतियों की निंदा से निकलकर एक संरचनात्मक संवाद बन जाती है, जो आपसी समझ को गहरा करती है। अक्सर पता चलता है कि साथी की निराशा उतनी भारी नहीं थी, अगर खुलकर बात हो गई। उल्टा निराश साथी को राहत मिलती है और दूसरा अपने प्रियजन की जरूरतों के बारे में नया सीखता है। एक और बात, निराशा जताने वाला साथी तटस्थ शांत स्वर बनाए रखने की कोशिश करे। साप्ताहिक रिवाज का फायदा है कि आप अब ताजे गुस्से में नहीं बोल रहे, स्थिति शायद कुछ दिन पुरानी है, बल्कि थोड़े फासले से। इससे शब्दों का चुनाव सावधानी से होता है। दोनों जानते हैं कि आलोचना इस ढांचे में प्यार से की जाती है, तो उसे व्यक्तिगत हमले की तरह लेना आसान नहीं होता। मकसद है मिलकर आगे बढ़ना और भविष्य में अनावश्यक दर्द से बचना। सवाल तीन, मैं अपने बारे में तुम्हारे लिए क्या बदल सकती हूँ। तीसरा सवाल आगे की ओर देखता है। ये साथी को इच्छाएं या जरूरतें जाहिर करने के लिए आमंत्रित करता है, जो पूछने वाले के व्यवहार या रवैये में बदलाव से जुड़ी हों। मूल रूप से आप पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए बेहतर साथी बनने के लिए क्या कर सकती हूँ, या क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे अलग चाहते हो। ये सवाल साहस मांगता है, क्योंकि आप आलोचना और सुधार के सुझावों के लिए खुद को खोलते हैं। साथ ही ये रिश्ते में आगे बढ़ने की बड़ी इच्छा दिखाता है। पूछने वाला संकेत देता है, मुझे तुम्हारी जरूरतें और
मेरी ओर से बदलाव की संभावना महत्वपूर्ण है। मैं खुद पर काम करने को तैयार हूँ। सवाल का महत्व तीसरे सवाल का महत्व है, व्यक्तिगत विकास के लिए खुलापन और रिश्ते में समझौते की भावना। कोई भी रिश्ता लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता, अगर दोनों जिद्दी बने रहें और एक दूसरे का ख्याल न रखें। रिश्तों पर शोध से पता चला है कि अनुकूलनशीलता और साथी के लिए खुद को बदलने की इच्छा दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए जरूरी है। वे जोड़े जो कभी कभी अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने और अपने व्यवहार को सुधारने को तैयार रहते हैं, आमतौर पर चुनौतियां को बेहतर संभालते हैं। यह सवाल इसी भावना को बढ़ावा देता है।
आप साथी को संरचनात्मक फीडबैक देने के लिए आमंत्रित करते हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए तत्परता दिखाते हैं। यहाँ नजरिया जरूरी है। बात यह नहीं कि कोई साथी खुद को पूरी तरह बदल डाले, बल्कि छोटे या बड़े बदलाव पहचानने की है जो साथ को और सुखद बना सकते हैं। अक्सर ये व्यवहार या आदतें होती हैं, न कि बुनियादी व्यक्तित्व लक्षण। उदाहरण के लिए बेहतर सुनने की क्षमता, रोजमर्रा के कामों में मदद, समय पर आना या ज्यादा स्नेह दिखाना, जैसा कि दूसरे को कमी महसूस हो या जरूरी लगे। मैं अपने बारे में क्या बदल सकती हूँ, सवाल में विनम्रता और सम्मान भी छलकता है। आप साथी की जरूरतों को गंभीरता से लेते हैं और रिश्ते की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। सवाल तीन के उत्तरों के उदाहरण इस सवाल के संभावित जवाब इच्छाओं या अनुरोधों के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है कि एक साथी दूसरे से क्या चाह सकता है। मैं चाहूंगी कि तुम शाम को जब हम साथ हो अपना फोन ज्यादा बार एक तरफ रखो, तब मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह मेरे साथ हो।
मेरे लिए तुम कोशिश कर सकते हो कि हमारी मुलाकातों पर समय पर आओ। जब तुम बार बार देर से आते हो तो मुझे सम्मानित महसूस नहीं होता। ज्यादा समय की पाबंदी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे मदद मिलेगी अगर तुम मुझे तब ज्यादा जगह दो जब मुझे अपने लिए समय चाहिए, बिना इसे व्यक्तिगत लिए। कभी कभी मुझे बस एक घंटा अपने लिए चाहिए और मैं चाहती समझूं कि तुम इसे समझो।
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम खुद से हमारे लिए समय निकालो, जैसे कोई डेट नाइट या वीकेंड प्लान करो। मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसी पहल हमेशा मुझसे आती है और मैं चाहूंगा कि तुम भी कभी मुझे चौंकाओ।
तुम अपने बारे में यह बदल सकते हो कि मुझे ज्यादा बार
दिखाओ या कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे छोटे छोटे प्यार के इशारे जरूरी लगते हैं और इसमें तुम थोड़े उदार हो सकते हो। इन सभी जवाबों में एक साथी की जरूरतें जाहिर होती हैं, जो दूसरे से किसी खास बदलाव की अपेक्षा से जुड़ी हैं। ध्यान दें, वाक्य सकारात्मक और मैं केंद्रित है। मैं चाहूंगा कि तुम, न कि आरोप लगाने वाले। तुम कभी नहीं करते, बदलो। ये रचनात्मक भाषा जरूरी है ताकि दूसरा अनुरोध को खुले दिल से स्वीकार कर सके। यह भी मदद करता है अगर चाहने वाला बताए कि यह बदलाव उसके लिए क्यों जरूरी है, जैसे उदाहरणों में तब मुझे ज्यादा सम्मानित महसूस होता है या तब मुझे ज्यादा प्यार महसूस होता है। इससे साथी इच्छा के पीछे का कारण समझता है। सवाल तीन के उत्तर के साथ व्यवहार पूछने वाले के लिए, जिसे ये बदलाव सुनने को मिलते हैं, फिर से खुले और गैर रक्षात्मक रूप में सुनना जरूरी है। यह सुनना मुश्किल हो सकता है कि साथी की नजर में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इससे अहंग को चोट लग सकती है। फिर भी ईमानदारी से साथी की स्थिति में खुद को रखने की कोशिश करें। वही यह इच्छा इसलिए साझा कर रहा रही है क्योंकि रिश्ता उसके लिए जरूरी है और उसे लगता है कि इससे आप दोनों और खुश रह सकते हैं। इस इच्छा को प्यार का सबूत माने, ना कि हमला, क्योंकि साथी चुप भी रह सकता था और असंतुष्ट भी। वह इसे उठाता है, इसका मतलब है भरोसा और बदलाव की उम्मीद। जब आप इच्छाएं सुने तो सराहना के साथ प्रतिक्रिया दें। उदाहरण, धन्यवाद जो तुमने मुझे बताया, मुझे पता ही नहीं था कि यह तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। भले ही अंदर से लगे ओह यह तो मेरे लिए मुश्किल है, पहले यह संकेत दे कि आप इच्छा को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा तरूंगी इसमें सुधार लाने की। आपको तुरंत कोई ऐसा वादा नहीं करना है जिसे आप निभा ना सके। अगर कोई इच्छा बहुत बड़ी या अस्पष्ट है तो पूछ सकते हैं, क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो कि तुम इसका क्या मतलब लेते हो, या क्या कोई खास बात है जिससे तुम्हें ज्यादा प्यार महसूस हो। इससे आप इच्छा को सही समझने की इच्छा दिखाते हैं। कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं हो सकती और यह साथी को ईमानदारी से बताना चाहिए, लेकिन बिना तत्परता छोड़े, जैसे समय की पाबंदी सच में मेरी कमजोरी है, मैं इसमें सुधार करूंगा करूंगी और शायद तुम मुझे याद दिला सकते हो जब हमें निकलना हो। इस तरह आप मिलकर समस्या सुलझाने का तरीका अपनाते हैं। जरूरी है कार्यान्वयन की संभावना जांचना और ईमानदार रहना। अगर कोई इच्छा आपकी प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है या आपको बहुत असहज लगती है तो यह सम्मानपूर्वक बताएं। अक्सर समझौता मिल जाता है। उदाहरण, सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा शारीरिक निकटता चाहता है, लेकिन आप इसमें बहुत शर्मीले हैं। समझौता ये हो सकता है कि आप छोटे इशारे बढ़ाएं, लेकिन अपनी सीमा में। इस पर बात की जा सकती है। संक्षेप में तीसरे सवाल के जवाब पर प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए कि आप दूसरे के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। यह भावना भरोसे को बहुत मजबूत करती है। साथी देखता है मेरी जरूरतें उसके लिए जरूरी है, वह कोशिश करने को तैयार है, और भले ही हर इच्छा पूरी ना हो सके लेकिन गंभीरता मायने रखती है जिससे दोनों अपने रिश्ते पर काम करते हैं। ऐसे जोड़े समय के साथ एक असली टीम भावना विकसित करते हैं। वे खुद को एक इकाई मानते हैं जो समस्याओं पर मिलकर काम करती है, न कि एक दूसरे के खिलाफ। व्यावहारिक सुझाव, रोजमर्रा में साप्ताहिक संवाद कैसे सफल बनाएं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इस योजना को सच में हर सप्ताह लागू करना। रोजमर्रा की जिंदगी व्यस्त है, काम, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां। ऐसे में साथी संवाद आसानी से पीछे छूट सकता है। ताकि साप्ताहिक रिवाज सिर्फ एक अच्छा इरादा न रह जाए, यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जिससे इसे व्यवस्थित किया जा सके। एक, निश्चित समय तय करें। एक खास सप्ताह का दिन और समय तय करें जो दोनों के लिए व्यावहारिक हो, जैसे रविवार रात खाने के बाद या शनिवार सुबह कॉफी के साथ, या समय को एक जरूरी कैलेंडर प्रविष्टि की तरह दर्ज करें। इसकी प्राथमिकता हो, नियमितता से संवाद टलता नहीं। कई जोड़ी ऐसा समय चुनते हैं जब सप्ताह शांत हो या अभी शुरू ना हुआ हो, ताकि दोनों का मन खाली हो। दो, बिना विघ्न के माहौल बनाएं। ऐसी जगह चुनें जहां आप बिना विघ्न हो सकें। फोन साइलेंट करें, बच्चों को व्यस्त या सुला दें और सुखद माहौल बनाएं। कुछ जोड़े सोफे पर बैठते हैं, कुछ टहलते हुए बात करते हैं। जरूरी है कि दोनों सहज हों और सच में सुन सकें। एक सुझाव, रिवाज की शुरुआत किसी छोटी नेटिक्वेट से करें, जैसे गले लगना या आंखों में देखना, ताकि यह एहसास हो अब हम पूरी तरह एक दूसरे के लिए हैं। तीन सवालों पर ध्यान केंद्रित करें। हर साथी के लिए तीन सवालों की संरचना पर टिके रहें। यह स्पष्ट ढांचा मदद करता है कि विषय से भटके नहीं या रोजमर्रा के मुद्दों में न उलझे। बातचीत में और बातें आ सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि मुख्य फोकस आश्चर्य, निराशा और बदलाव की इच्छा पर रहे। अगर अन्य विषय घर, पैसे, रोजमर्रा की व्यवस्था उठाने हैं तो उन्हें पहले या बाद में निपटाएं, या अगर संभव हो किसी और समय के लिए टाल दें। इससे संबंध संवाद भावनात्मक रूप से केंद्रित रहता है। चार, सक्रिय सुनना बिना टोके। यह नियम बनाएं कि हमेशा एक ही बोले और दूसरा सुने, जब तक बोलने वाला संकेत न दे कि वह सब कह चुका है। सक्रिय सुनना मतलब सच में ध्यान देना, सिर हिलाना, आंखों में देखना और साथ साथ जवाब न सोचना। बोलने वाले को न टोका जाए, न आता जाए। यह नियम अनुशासन मांगता है लेकिन फायदा देता है। दोनों को सम्मान और गंभीरता का एहसास होता है। अगर मदद मिले तो आप प्रतीकात्मक बोलने की वस्तु, जैसे कोई खास चीज पकड़ना जब बोले, इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पता चले कि किसकी बारी है। पांच, भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें। खासकर जब निराशा और बदलाव की इच्छाएं उठें तो जरूरी है कि कोई झगड़ा न हो। यह संवाद ऐसे समय के लिए न रखें जब आप पहले से नाराज हों। ऐसा समय चुनें जब आप दोनों शांत हों। अगर बातचीत के दौरान माहौल बिगड़ जाए, जैसे कोई आहत हो, तो अपने साझा लक्ष्य को याद करें। न जीतना है, न सही साबित होना है, बल्कि एक दूसरे को समझना है। स्वर और शब्दों में सम्मान बनाए रखें। जरूरत हो तो थोड़ी देर का विराम लें, गहरी सांस लें और फिर शांत होकर जारी रखें।
6. समय सीमा समायोजित करें। साप्ताहिक संवाद घंटों लंबा होना जरूरी नहीं, अक्सर 20 से 30 मिनट ही काफी होते हैं। अगर दोनों मुद्दे पर टिके रहे, आप चाहें तो ज्यादा देर भी बात कर सकते हैं। जरूरी है कि समय का दबाव ना हो, पर्याप्त समय रखें और खुद के प्रति नरम रहें। अगर कभी संवाद छोटा या सतही हो जाए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका है। नियमितता लंबाई से ज्यादा जरूरी है। हर सप्ताह एक छोटा लेकिन ध्यानपूर्ण संवाद तिमाही में एक लंबी बातचीत से ज्यादा असरदार है। 7. सकारात्मक नोट पर समाप्त करें। अपना साप्ताहिक संवाद संभव हो तो किसी सकारात्मक बात के साथ खत्म करें। यह एक साधारण धन्यवाद हो सकता है, धन्यवाद जो तुमने सुना और इतने ईमानदार रहे, एक गले लगाना या चुंबन, या आप इसे किसी छोटी सी दोपहरिया के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ जोड़े इसके
बाद डेट नाइट रखते हैं, जैसे साथ में फिल्म देखना, टहलना या कुछ स्वादिष्ट खाना। इससे संवाद रिवाज किसी सुखद चीज से जुड़ जाता है और दोनों को इसका इंतजार रहता है। यह भी मजबूत करता है कि आलोचना के बावजूद आप साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। 8. बने रहें और लचीले रहें। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद कोई साथी शुरू में संकोची हो। अगर शुरुआत में दिक्कत हो तो हार न माने।
अभ्यास से सब आसान होता है, कुछ हफ्तों में आप अपनी लय पा लेंगे। और लचीले रहें, अगर किसी सप्ताह समय बहुत कम हो तो संवाद को उसी सप्ताह के किसी और दिन पर शिफ्ट करें बजाय छोड़ने के। अगर कभी सच में कोई बाधा आ जाए तो संवाद फोन पर भी किया जा सकता है अगर कोई यात्रा पर है। मुख्य बात है कि नियमितता बनी रहे, इससे संदेश जाता है।
हमारा रिश्ता हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम इसे संयोग पर नहीं छोड़ते। निष्कर्ष 3 सवालों, मैंने तुम्हें किस बात से चौंकाया, मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया और मैं अपने बारे में क्या बदल सकती हूँ, के साथ साप्ताहिक संबंध संवाद एक प्रभावी तरीका है जिससे रिश्ता जीवंत और खुशहाल बना रहता है। यह खुलापन, भरोसा और निकटता को बढ़ाता है क्योंकि दोनों साथी नियमित रूप से सकारात्मक भावनाएं,
आलोचना और इच्छाएं साझा करते हैं। छोटी समस्याएं तुरंत उठ जाती हैं इससे पहले कि वे बड़ी बने, और अच्छे अनुभव साझा होते हैं बजाय इसके कि उन्हें सामान्य मानकर छोड़ दिया जाए। वैज्ञानिक शोध ऐसे संवादों की प्रभावशीलता की पुष्टि करते हैं। वे जोड़े जो लगातार संवाद करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं और खुद पर काम करते हैं, वे ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा जुड़े हुए होने की रिपोर्ट करते हैं। बेशक ऐसा रिवाज प्यार या स्नेह की जगह नहीं ले सकता, लेकिन यह इन्हें पोषित करता है। जब आप हर सप्ताह समय निकालकर रिश्ते पर ध्यान देते हैं तो आप दिखाते हैं, तुम मेरे लिए जरूरी हो, हमारा साथ मेरे लिए जरूरी है। यह सुरक्षा और सराहना का हैस।